प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही कहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है।
ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है वर्तमान समय में ईश्वरीय नियम मर्यादाओं की वास्तविकता। संसार की हर व्यवस्था नियम से ही चलती है, प्रकृति भी जो नियमित रूप से कार्य कर रही है, रेगुलर जो सेवा हमें दे रही है, वो भी कुछ न कुछ नियम सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, इसलिए दे रहे हैं। हमारा मानव जीवन भी अगर हम ठीक से चलाना चाहते हैं तो हमारे जीवन के भी कुछ सिद्धांत हो, नियम हो, मर्यादाएं हो, तभी हमारा जीवन अनुशासित होकर परिवार, समाज, देश सबके सामने एग्जाम्पल बन सकता है और यथार्थ रूप में उपयोगी हो सकता है। प्यारे बाबा ने हम सबको सत्य ज्ञान देकर अलौकिक जन्म दिया और एक नया मरजीवा ब्राह्मण जीवन हमारा आरंभ हुआ। ईश्वरीय ज्ञान सबको दिया जाता है, लेकिन अलौकिक जन्म तब कहा जाता है जब से हम नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं। भल हम सेंटर में रोज आते रहे जाते रहे, सेवा में सहयोगी भी बनते रहे, लेकिन जब तक ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तब तक ब्राह्मण जन्म नहीं कहा जाता है। बाबा ने त्रिकालदर्शी बनकर, बल्कि स्वयं ज्ञान सागर बाप ने हमें जीवन की एक रूपरेखा बनाकर दी है, क्योंकि कल्याणकारी बाबा सब कुछ देखकर हमारे कल्याण और उन्नति के लिए हमें जीवन के नियम मर्यादा और दिनचर्या बनाकर देते हैं। भल ज्ञान में हम आ जाए, कुछ समय पहले आए, कभी भी आए, लेकिन 75 वर्षों पूर्व भगवान ने जो हमारे जीवन की रूपरेखा बनाई, आज भी वो यथार्थ सिद्ध है। देखो, जो मोरालिटी है, नीति संबंधित जो बातें हैं, वो समय प्रति समय, परिस्थिति, समाज के प्रमाण बदलती रहे, लेकिन जो प्योर स्पिरिचुअलिटी है वो सनातन रहती है, अविनाशी रहती है, अपरिवर्तनशील रहती है और हर समय वो उतनी ही हमारे जीवन को लागू होती है। बहुत सिंपल बात बाबा ने हमें समझाई है कि पूरे ड्रामा में जो हमारा रोल है 84 जन्मों का, अगर संसार चक्र में पूरे पार्ट को हमें सफल करना है तो केवल संगम युगी जीवन चक्र को सफल करना है, क्योंकि पूरे ड्रामा का आधार संगम युग है। सतयुग और त्रेता युग संगम युग के कर्मों की प्रारब्ध है और द्वापर कलयुग उसकी यादगार है। माना पूरे ड्रामा संसार चक्र को मुझे सफल करना है तो संगम युगी जीवन चक्र, ब्राह्मण जीवन चक्र को मुझे सफल करना है। कितना सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति देखिए, इस एक अंतिम जीवन को श्रीमत पर अभी हम सफल करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरा ड्रामा हमारा सफल हो जाता है। और संगम युगी जीवन चक्र को सफल करना है उसके लिए सिंपल बात कि रोज की दिनचर्या के चक्र को सफल करो। अगर मेरा इस ब्राह्मण जीवन का संगम युग का हर दिन सफल है तो ऑटोमेटिक मेरा ये अंतिम ब्राह्मण जीवन सफल है। अंडरस्टूड है, मेरा टोटल चक्र सफल है। और रोज की दिनचर्या के चक्र को सफल करने के लिए बाबा ने हमें पूरी दिनचर्या बना के दी है, नियम और मर्यादाएं सिखाई है। जब सत्य ज्ञान हम समझते हैं, भल भक्ति में भगवान के प्रति भावना रही, श्रद्धा रही, खुद की चाहना भी रही कि जीवन श्रेष्ठ, लेकिन समय उतरती कला का था, सही ज्ञान नहीं था और सत्य गुरु गाइड नहीं था, तो इच्छा होते हुए कठिन व्रत उपवास, नियम संयम धारण करते हुए, भगवान में भी भावना श्रद्धा, उनसे भी इच्छा रखते हुए भी हम जीवन श्रेष्ठ नहीं बना सके, उतरते ही गए। इच्छा थी, पुरुषार्थ था, व्रत उपवास के नियम संयम थे, भगवान में भी भावना, भगवान को भी अर्जी करते थे, पर नहीं हुआ। अब मौका है संगम युग के अंदर, जब स्वयं भगवान आते हैं, हमारे जीवन का गाइड बनते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, चढ़ती कला का समय है। अब हमारे ऊपर है कि कितनी पावरफुल विल पावर, इच्छा शक्ति हम रखते हैं, उस अनुसार कितना श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और भगवान के बताए हुए श्रीमत क्या है। श्रीमत ही तो नियम संयम मर्यादाएं सिखाती है। अगर वो पालन हम करते हैं तो प्राप्ति ही प्राप्ति, आत्मा भरपूर संपन्न हो जाती है और 100% परफेक्ट आत्मा का फुल डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए जब बाबा का सत्य ज्ञान विवेक पूर्ण रीति से हम समझ लेते हैं, दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, किसमें प्राप्ति है, किसमें नुकसान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो ऑटोमेटिक हमें ही स्पष्ट हो जाता है। और जब हम प्रैक्टिकल जीवन बनाने का लक्ष्य रखते हैं, हमें जीवन श्रेष्ठ बनाना है, केवल फिलॉसॉफी की बात नहीं, केवल ज्ञानी जन विद्वान पंडित बनने की बात नहीं, हमारा लक्ष्य फिलॉसॉफी को रोज के दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल करना है, ज्ञान आचरण में लाना है। आदर्श जो ऊंची सत्य बातें बताते हैं, वो सारे आदर्श वास्तविक जीवन में हम धारण करना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं हम अपने कर्म के बल से ही जीवन की नैया को पार कर सकते हैं। किसी के आशीर्वाद कृपा, किसी के द्वारा किया हुआ शक्तिपात कहां तक चल सकेगा। हमें अपने कर्म के बल से जीवन की नैया को पार करना है। एक तो ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसी के आशीर्वाद कृपा शक्तिपात से जीवन कहां तक चलेगा। इंसान को खुद अपने कर्म के बल से जीवन को पार करना होता है। इसलिए वेदों में भी स्पष्ट लिखा है कि कर्म की शुद्धि के बिगैर वेद भी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात हम जानते हैं कि जीवन इस मनुष्य लोक में, इस संसार में हमें प्राप्त होता है, परमधाम में हम मर्ज स्थिति में हैं, वहां जीवन नहीं है। जीवन इस दुनिया में है, नाटक इस दुनिया में चलता है, इस स्थूल वतन में। और ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है कि जो करेगा सो पाएगा। केवल ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है कि जो सोचेगा वो पाएगा, जो बोलेगा वो पाएगा, नहीं, जो करेगा सो पाएगा। बेशक बोलना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है, उस हिसाब से उनका प्रभाव प्राप्ति जरूर है, लेकिन जब तक ठोस कर्म में नहीं आता है फल प्राप्त नहीं होता है। हम कितना भी बड़ा मंथन करें, बहुत अच्छा हम बोलें, लेकिन जब तक कर्म में सुधार नहीं स्थाई, तब तक प्राप्ति रहे। हम कह सकते हैं कर्म का हिसाब माना पत्थर पर लकीर हो जाए, लकीर पत्थर पर हो गई माना हो गई, ठोस चीज। बोलना माना रेत पर लकीर बनेगी मिटेगी, पर सोचना माना पानी पर लकीर। इसलिए आचरण, प्रैक्टिकल जीवन, उसे सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। दुनिया में लोग शास्त्र प्रमाण को फाइनल प्रमाण समझते हैं, ये भी शास्त्र में कहा है माना ये राइट है ना, तो वो शास्त्र प्रमाण को सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं भक्ति में। लेकिन संसार के सनातन नियम अनुसार जीवन, प्रैक्टिकल जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो सबसे बड़ा ठोस प्रमाण। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान सुनना नहीं है, जैसे भक्ति में सत्संग कथा में सुनते हैं लोग, हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान सुनना नहीं है, केवल ज्ञान समझना नहीं है, वहां तक सीमित नहीं। मुख से खाया, भोजन पेट में भरा, इतने से ब्लड और एनर्जी नहीं बनती। पेट में भोजन भरा लेकिन डाइजेस्ट हुआ, हजम होगा तो ब्लड एंड एनर्जी बनेगा। हजम करने के लिए भी श्रम कर्म चाहिए। ज्ञान सुना, बुद्धि से समझा, मुख से समझाया, लेकिन आचरण में, रोज के कर्म में, रोज की दिनचर्या में उसको धारण करने से ही ज्ञान के हर सत्य की शक्ति का अनुभव होगा। तब ज्ञान गुण में परिवर्तन होगा, शक्ति में परिवर्तन होगा, तब हमारा एक श्रेष्ठ जीवन चरित्र निर्माण होता जाएगा। तब हम गांधी जी की तरह कह सकेंगे, जैसे गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हमारा जीवन ईश्वरीय संदेश है, बाबा का ज्ञान और मेरा जीवन मैच करता है, अनुरूप, तब संगम युग का वैल्यू हमने किया कहेंगे, क्योंकि संगम युग प्रैक्टिकल करने का युग है। थ्योरिटिकल द्वापर युग से शास्त्र और यादगार बने, इसलिए बाबा कहते हैं कि गीता शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीवन को गीता बनाने की जरूरत है। हमारा जीवन ही गीता ज्ञान, रोज एक अध्याय पलटने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में नियम है ना कि भी रोज एक अध्याय पढ़ते, रोज एक पाठ गीता का करेंगे। यहां जीवन के अध्याय को बदलना है, और जब ये लक्ष्य है, बुद्धि में क्लैरिटी है कि कर्म में आने से ही, क्योंकि बाबा ने कहा है संगम युग को वरदान है कि अभी जो करेगा वो एक का 100 गुना फल प्राप्त करेगा। वरना पूरे ड्रामा के लिए एक ही नियम है, एक का एक मिलेगा, एक किया एक मिलेगा, करेगा सो पाएगा, जो किया उतना, जैसा किया वैसा, जितना किया उतना, ये हिसाब। लेकिन जैसे दुनिया में भी राजाएं आते हैं, बड़ी अथॉरिटी वाले आते हैं, तो वे खुद आते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा लोगों को दे देते हैं, ऐसे भगवान जब आते हैं तो संगम युग में ये वरदान है इस समय को कि एक का 100 गुना फल। एक जन्म करो 21 जन्मों का फल पाओ, बल्कि 84 जन्मों का फल पाओ। इसलिए अभी ही जीवन में धारण करने की आवश्यकता। और दूसरी बात कि जब हम ज्ञान समझते हैं और समझकर स्व इच्छा से करते हैं, समझकर करते हैं, तो हमें दूसरों से कोई नियम, संयम, मर्यादाएं लागू की गई है ऐसा अनुभव नहीं होता। आज दुनिया में लोग क्यों, हम भाई बहनों को कहते हैं कि भाई आपका ज्ञान अच्छा है पर आपके नियमों में हम नहीं चल सकते, ऐसे कहते हैं ना, आप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद समझे नहीं है, इसलिए उनको जैसे नियम बाहर से लागू किए गए हैं ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा या शिव बाबा के द्वारा, ऐसा उनको महसूस होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान समझता है तो स्वयं को ही समझ में आ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो हमें दमन लगता है, इंसान को लगता है जैसे हमें बांधा जा रहा है। और इसलिए जब व्यक्ति खुद नहीं समझता है तो स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का आचरण करता है ना। जैसे आजकल माता पिता बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए नियम संयम आज के जनरेशन को समझ में नहीं आता है, तो वो समझते हम ये नहीं मानेंगे, हम अपनी तरह जिएंगे आजादी से, पर वास्तव में आजादी के नाम पर स्वेच्छाचारी विहार करते हैं। इसलिए बाबा यहां ज्ञान समझाते हैं कि हमें समझकर हम आचरण करेंगे तो बंधन नहीं लगेगा, दमन नहीं लगेगा, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पालन करना पड़ता है, ये नहीं लगेगा। इसलिए जो भी बाबा के सच्चे पक्के ज्ञानी बाबा के बच्चे हैं, अगर उनसे आप मिले, अनुभव पूछे, तो उनको यही अनुभव है कि हमें तो कोई त्याग अनुभव ही नहीं होता है, हमें कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है, यहां कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, हमें तो ऐसे लगता ही नहीं। उनका ये अनुभव है कि हमारा सही जीवन अब शुरू हुआ, पहले जो जीते थे वो सही रहे, अब राइटियस जीवन शुरू हुआ, हमारी वास्तविक जीवन ये है, ये उनको अनुभव होता है। और इसलिए उनका दिल गाता है कि छोड़ा क्या, छोड़ने से ज्यादा तो प्राप्त हुआ है, मिला है। और जैसे जैसे ज्ञान में चलते जाते हैं, नियमों में चलते जाते हैं, वर्षों से ज्ञान में चलने वाले, नियमों में चलने वाले भाई बहने वर्तमान समय को जब देखते हैं तो सच में बाबा के लिए दिल से शुक्रिया निकलता है कि सचमुच बाबा ने हमें 20 साल पहले, 30 साल, 50 साल पहले इन नियमों में चलाया, आज हम देख रहे हैं कि वो कितना कल्याणकारी हुआ। समझो पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मैंने बताया ना, ब्राह्मण जन्म ही तब कहा जाता है जब पवित्रता के व्रत को पालन करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते। अब महसूस होता है कि जिन्होंने जीवन में पवित्रता का महत्व नहीं समझा, जो लोग बॉडी कॉन्शियस रहे, विशियस रहे, दैहिक भावों के कारण विषय वासना में जो लिप्त रहे, आज वो कितने गंदे रोगों के शिकार हो गए। हम भाग्यशाली हैं, बाबा ने हमें बरसों पहले ही पवित्र बना दी। ज्ञान का पहला सत्य ही पवित्रता को सिद्ध करता है। मैं आत्मा हूं, ये सत्य ही देह भाव से ऊपर उठा देता है और काम वासना, देह को भोगना प्रथम लेसन से ही विरुद्ध है। पहला लेसन ही सिखाता है शरीर भान को भूलो, आत्मभिमानी बनो। और विषय वासना देहभान में फंसाती है, देह आकर्षण में लाती, पहली ही श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। और जब आत्मभिमानी ही नहीं, क्योंकि काम वासना माना दैहिक भाव में रहना, तो बाकी और आगे के लेसन्स हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, योगी बनने का तो सवाल ही नहीं, रूहानियत आने का सवाल ही नहीं। इसलिए चूंकि बाबा हाईएस्ट परफेक्ट स्टेज हमारी बनाना चाहते हैं, 100% आत्मा को शुद्ध बनाना चाहते हैं, विकारों की बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने पहले कर्म में पवित्रता लागू कर दी। आत्मा आत्मा भाई भाई, एक ब्रह्मा बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, हम भाई बहन, पवित्रता हमारा नेचुरल धारणा है जीवन। ऑटोमेटिक हमारी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, सब में परिवर्तन आ जाता है। और जब कर्म में संयम आप ले आते हैं, फिर ऑटोमेटिक वाणी और मनसा में भी चंचलता नहीं रहेगी। जब तक कर्म ठीक नहीं होता, मानसिक जो स्खलन है, मन में जो चंचलता आती है और आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होती रहती है, उनको आप रोक नहीं सके। कर्म में धारणा आने से अपने आप 50% विकार डाइल्यूट हो जाते हैं, फोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कोई भी विकार का अंश वंश न रहे, ये लक्ष्य है हमारा। क्योंकि हम ऐसी निर्विकारी दुनिया बना रहे, इसलिए बाबा कहते हैं ना, काम महाशत्रु, उस पर जीत पहनाते। जो लोग दैहिक भाव में जीते हैं, दे आकर्षणों में, उनके जीवन की स्थिति क्या है? आज से 25-50 साल पूर्व फिर भी लोग पति पत्नी के संबंध तक सीमित रहते थे, आजकल वो भी वफादारी नहीं है, इतने गिर गए। बाबा जानता था अंत का समय क्या हो रहा है, पहले से बाबा ने हमें सुरक्षित कर दिया। जब बाबा ने पवित्रता की धारणा करवाई 75 वर्ष पूर्व, उस समय के लोगों में भी इतना दैहिक भाव नहीं था, ना दैहिक भाव विकारी वृत्तियां जगाने वाले चित्र साधन पदार्थ फिल्में कुछ भी नहीं था। उस समय बाबा ने पवित्रता का व्रत करवाया। आज देखते हैं कितना विकार चारों ओर है, पवित्रता कितनी जरूरी है, जो हमें सुरक्षित करती, हमारे चरित्र को सेफ करती। उस समय भी जिन भाई बहनों ने भगवान की आज्ञा पर पवित्रता अपना ली, आज दुनिया में कितना भी चमक दमक हो, माया का पॉम्प हो, उनको कोई आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि फाउंडेशन बन गया। इसलिए ये मर्यादा मस्ट, फाउंडेशन, इसका कोई अल्टरनेट बाबा ने नहीं दिया है। पवित्र बनना माना बनना ही है, उसका कोई विकल्प बाबा ने नहीं दिया है। मार खाओ चाहे कुछ भी करो, पवित्र और योगी बनो, इसका कोई विकल्प बाबा ने नहीं कहा है, अल्टरनेट उसका नहीं है, इट इज मस्ट, करना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सिर्फ संदेश नहीं है, केवल फरमान नहीं है, ये ऑर्डिनेंस है, हुक्म है भगवान का। पर जो ज्ञान समझ कर करेगा, उससे खुद का ही निर्णय लगेगा, हुक्म नहीं लगेगा कि नहीं मैं खुद चाहती हूं मेरा जीवन पवित्र, क्योंकि ज्ञान समझ गए ना। इस प्रकार अन्न शुद्धि देखने में लगेगा कि क्या है, खाने से क्या प्रभाव आएगा। सोचने वाले तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि अब खा लिया एक बार दो बार, इससे क्या है, क्या प्रभाव पड़ जाएगा। कई लोग उल्टा देखते भी है, ऐसा होता भी है, सोचते भी है कि शाकाहारी खाने वाला इतना गुस्सा कर रहा है, नॉनवेज खाने वाला ये देखो कितना मैनर से चलता है। लेकिन बाबा ने ये नियम क्यों किए? हमारा लक्ष्य निरंतर स्मृति में रहना है, परमात्मा याद में रहना है। इसलिए मन इंद्रिय रसों में और स्वाद में न चला जाए, इसलिए बाबा ने हमें शुद्ध सात्विक शाकाहारी पवित्र व्यक्ति द्वारा बना हुआ भोजन लेने के लिए कहा। सबसे पहले बाबा ने हमें एक बात समझा दी कि तुम खाने के लिए नहीं जीते हो, जीने के लिए जो जरूरी है वो खाना है। और जो जरूरी है वो भी कौन सा खाना है, वो भी बाबा ने बता दिया, सात्विक शाकाहारी शुद्ध पवित्र भोजन खाना, ताकि रस और स्वाद उत्तेजित ना हो। जो स्वाद की चीज हम खाते हैं फिर क्या होता है, चार बार दस बार बोलेंगे दस के आगे कि आज तो बड़ा टेस्टी भोजन था, वरना बुद्धि किसमें गई। जितना स्वादिष्ट खाते हैं फिर खाने की इच्छा होती रहती। हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसा वैसा खाएं, लेकिन बाबा कहते हैं ना, संगम युग माना बीच मध्यम हर चीज। ऐसा भी नहीं कि भी उबाल के खा लो, नहीं, हर चीज बैलेंस है ना, अति ना हो। गीता में स्पष्ट कहा है कि योगी अति आहारी भी नहीं होगा, अनाहारी भी नहीं होगा, खाए ही नहीं, खाए ही नहीं, ऐसे भी नहीं बहुत खाता ही रहे वो भी नहीं, मिताहारी अल्पाहारी माना आवश्यक खाने वाला। और एक बार खाने की क्रिया अगर स्वाद में चली गई, बात स्वाद उत्तेजित करने की बात हो गई, आदत हो गई, तो आवश्यक नहीं होगा तो भी फिर इच्छा होगी। खुद के घर से चाय पी के निकले हैं पर आदत पड़ गई ना, कोई दूसरा कहेगा इतनी थोड़ी पी लो तो बैठ जाएंगे पीने, अरे भाई पी के तो निकले हो, फिर क्यों पीना, पर आदत। इसलिए बाबा कहते कोई भी चीज खाने से पहले क्यों योग करो, ताकि डिटैच हो जाओ। बाबा की याद से हम रस और स्वाद से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि हम मन रस लेते हैं, अतिंद्रिय रस लेते हैं, तो उसकी आकर्षण हल्की हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर जो खाऊं 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 होता है ना वो नहीं होगा। तो खाना न खाना, खाकर प्रभाव में न आना, वो बाद की बात है, पर मुझे खाना नहीं है ये संकल्प, ये धारणा हमारे विल पावर को विकसित करते है। इससे विल पावर आएगा कि भाई आज एक चीज से मुक्त रहने की शक्ति आई तो हमारे में टोटल विकारों से मुक्त होने की शक्ति आएगी। अब एक छोटे से संकल्प कि मुझे विकारी के हाथ का नहीं खाना है, या बाहर होटल में किसी के घर नहीं खाना है, एक इतना संकल्प अगर मैं पालन कर सकूंगी तो विल पावर विकसित तो होगा, मैं उससे ऊंचा संकल्प टोटल निर्विकारी रहने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगी। अगर बार बार हम धारणा तोड़ते हैं, खा लेते हैं, चलो प्रभाव कितना पड़ता है वो बाद की बात है, पर आपका विल पावर और मनोबल तो टूटता है ना, अंदर ग्लानी तो होती है ना कि इतना भी नियम में पालन नहीं कर सकी। तो बार बार विल पावर टूटने से फिर आप में पावर नहीं भरेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये एक अंतिम जन्म, हाँ बाबा कहते हैं मेरे खातिर, विश्व के खातिर तुम पवित्र नहीं रह सकते, शुद्ध आहारी नहीं बन सकते। और अंदर से स्वाद रस नहीं जाएगा तो बुद्धि खोजती रहेगी। जैसे लोग उपवास करते हैं ना, भाई धर्म भक्ति शास्त्र बुजुर्गों ने कहा है इन सब ने, इसलिए चलो हम करें, पर अंदर से रस और स्वाद नहीं गए हैं इसलिए खोजते रहते हैं कि ये तो नहीं खाना है, ये तो नहीं खाना है, तो ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते करके उपवास के दिन 10 चीज बना के हम खा लेते, क्योंकि खुद की समझ से स्वाद नहीं गया ना, इसलिए हम खोजते रहते। इस प्रकार वे हमें बाहर का अपवित्र के हाथ का नहीं खाना है, ये एक नियम पालन करना है, पर दिल से नहीं करेंगे तो खोजते रहेंगे कि ये तो मशीन मेड है ना, ये तो अनटच है ना, ये तो खा सकते हैं ना, करके हम कितना अपने नियम को ढीला कर देते। कोई लाचारी परिस्थिति वो अलग बात, लेकिन उसमें भी अगर ढीले होते हैं तो फिर बार बार ढीला होने का आदत पड़ जाता है। और ये नियम बाबा ने जो हमें बना के दिया वो आज, मैंने कहा ना जब बाबा ने यज्ञ स्थापन किया, चलो भारत में आए हुए भी बाबा को 60 वर्ष हो गए, 60 साल पहले भारत में आकर बाबा ने ये नियम गृहस्थी भाई बहनों को बताए, पहले तो चलो यज्ञ में समर्पित थे। उस समय तो कोई इतनी चीजें फल सुविधाएं भी नहीं थी, पर पुराने भाई बहनों ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया। आज तो इतनी सुविधाएं, साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है इन नियमों का पालन करने की। आज इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वृत्तियां भी विकारी बन गई हैं, भावनाएं दूषित हो गई है, लोगों के मन ठीक नहीं है। पहले तो लोग फिर भी सात्विक थे, सच्चे भगत थे, आज तो मनोस्थिति बिल्कुल गिर गई है, वृत्तियां भी बिगड़ गई है, भावना भी एक दो के लिए अच्छी नहीं रही है, और आप कितने केसेस अखबारों में पढ़ते होंगे कि कुछ खिला दिया, बेहोश कर दिया, लूट कर चले गए। फलों में, चीजों में इंजेक्शन डाल के नशे की चीजें डालते हैं। लोग जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां फल खाते, इसलिए फल में इंजेक्शन से नशे की दवाइयां डालते हैं, और हमें कहेंगे कि हाँ हाँ आप तो फल खाएंगे ना, और कुछ तो नहीं खाएंगे करके उनसे भी लोगों को बेहोश करते हैं और नशे में ले जाते हैं और लूट लेते। ये हुआ है प्रैक्टिकल, एक ब्रह्मा कुमार भाई के साथ ही केस हुआ। और आपको पता ही होगा कि जितनी भी खराब विद्याएं हैं, समझ गए, बुरी विद्याएं हैं, इविल पावर्स है, जो तंत्र मंत्र ये वो करते हैं ना, वो अन्न के द्वारा ही उसके प्रयोग होते। इसलिए जो अन्न शुद्धि का नियम पालन करते हैं, बाबा ने हमें बहुत सेफ कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है। हाँ, हमें बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए कि समय से पहले बाबा ने हमें जगा दी। इस प्रकार रोज सुबह जल्दी उठना, अमृत वेले योग करना, रोज ज्ञान योग के क्लास करना, ये जो हमारे दिनचर्या के नियम है, इससे हमें कितना फायदा है। जब लोग उठते हैं तब तक तो हमारा आधा काम पूरा हो जाता है, हमारी आधी दिनचर्या पूरी हो जाती है, आधे काम पूरे हो जाते। एक जल्दी उठने की आदत से हम स्व उन्नति का पुरुषार्थ कर सकते हैं, और कितनी फ्रेशनेस हमें रहती, कितना फायदा है। एक गांव में बहुत चोरी होती थी, तो उस गांव वालों ने मोहल्ले वाइज हर घर से एक एक करके टर्न बनाए कि आज ये 10 लोग रात जागेंगे, आज ये 10 लोग जागेंगे। अब दूसरों को बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर जो बाबा के बच्चे उस मोहल्ले में रहते थे उनको तो बहुत मजा आता था कि अपन तो वैसे ही अमृत वेले 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं, हमको कोई मुश्किल नहीं, हमारे घर में चोर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम 3:30 बजे बाबा की याद में बैठ जाते हैं। ये तो मैं एकदम स्थूल फायदा बता रही, भगवान ने तो बहुत ऊंची बात बताई है कि बाबा से वरदान पाने का वो समय है जब सब सोए रहते हैं, तब हम भगवान से वरदान प्राप्त करके भरपूर हो जाते हैं। भगवान ने तो सबको ऑफर किया है, इसमें ज्ञानी अमृत वेला उठेगा तो मिलेगा ऐसा नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी जो भी अमृत वेला उठेगा भगवान को याद करेगा वो वरदान पाएगा। लेकिन बाबा ने हमें ये नियम बना के दिया, हमें शुरू में मुश्किल लगी, पर जैसे जैसे पालन करते गए आज हमें नेचुरल और कितना फ्रेश। कभी भी सुबह जल्दी जाना हो, ट्रेन पकड़ना हो, कोई काम करना हो, हमें मुश्किल लगता ही नहीं। जिनको आदत नहीं है बिचारों के आधों की ट्रेन ही मिस हो जाती है, और सुबह उठना है तो पूरी रात ही जागते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं सो जाएंगे तो उठ नहीं सकेंगे, और सुबह उठने की चिंता में सारी रात नींद नहीं आती। तो बाबा ने हमें ये नियम जो बना के दिए बहुत कल्याणकारी है, इसलिए बाबा तो कहते हैं पर हम खुद भी समझकर स्व इच्छा से पालन करें, पक्के सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, कर्म में शुद्धि लाएं, ताकि वर्तमान जीवन भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ। तो हमें मुश्किल नहीं लगना चाहिए। आज बाबा ने पिक्चरों से मुक्त किया, फिल्मों से। कितने अश्लील गंदे फिल्म आने लगे। पहले तो फिर भी सामाजिक थे, कुछ सिखाते थे अच्छा, अब तो कितना गंदा। इसलिए ये नहीं कि थिएटर में जाके फिल्में नहीं देखनी, घर में टीवी पर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई कहे कि मैं होटल का नहीं खाता, होटल में जाके नहीं खाता हूं, पर होटल का घर में लाके खाता हूं, तो क्या फर्क है? थिएटर में फिल्म देखने नहीं जाता हूं, पर वही गंदी फिल्म टीवी पर घर में देखूं, तो क्या नियम हुआ? जो अश्लील है, दैहिक भाव, देह प्रदर्शन है, वो हमें नहीं देखना। कहीं कहते हैं हम धार्मिक फिल्में देखते हैं, पर धार्मिक फिल्मों में भी काम करने वाले कौन है? वही एक्टर है। तो लोग यही सोचते, ये जो सीता बनी है ना, वो फलानी एक्ट्रेस है, जो राम बना है ना, वो फलाना एक्टर है, तो बुद्धि तो उसमें ही गई ना। अच्छा, उनके भी ड्रेसेस कैसे होते है ना? तो खुद को जितना हम सेफ रखेंगे नियम मर्यादा और दिनचर्या से, हमारा ही कल्याण। और ऐसे ठोस ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही बाबा का कार्य संपन्न करेंगे। ओम शांति।
आरज़ू है आप पर अपने को अब